अब आप रजनीश कुमार यादव की आवाज में बीए पार्ट थ्री के छावादत्तर काव्य में गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवनधारा पर प्रकाश एवं उनकी कविता की व्याख्या सुनेंगे। प्रश्न: गजानन माधव मुक्तिबोध की जीवनधारा पर प्रकाश डालिए अथवा गजानन माधव मुक्तिबोध की भाषा शैली अपने शब्दों में लिखिए। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य में नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। नई कविता की सर्वमान्य विशेषताएं आपकी कविताओं में पूर्ण रूप से विकसित हुए हैं। छावादत्तर कवियों में जिस प्रकार से काव्य रसागत हुए उनमें श्री मुक्तिबोध जी सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी काव्य कला का विश्लेषण करते हुए श्री शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं, मुक्तिबोध जी की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से सुर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारे बातें हम ही को सुनाती है और हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से और भी अधिक पहचानने लगते हैं। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को एवं उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुई। अपने हिंदी साहित्य जगत को मध्ययुगीन विचारधारा से बाहर निकालकर एक नए वितान के माध्यम से नई कविता को एक नया स्फूर्ति प्रदान की। एक विचारक उनके बारे में लिखते हैं कि मुक्तिबोध नंददास की भांति नजड़िया हैं और न मध्यकालीन कवियों की भांति घड़ियां हैं। वह एक लोहार हैं और सुनार की भांति सौ ठुक ठुक करके अपनी बात कहकर लोहार की भांति एक चोट में खटाक से अपनी बात कह देते हैं। आपने काव्य में मूलतः चांद का मुंह टेढ़ा है, तार सप्तक में प्रकाशित कविताएं, उपन्यास में विवात्र कहानी संग्रह, काठ का सपना, एक साहित्यिक डायरी आदि सफलतापूर्वक लिखी हैं। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध मूल रूप से नई कविता के प्रेरक कवि रहे हैं। आपकी कविता में जहाँ एक ओर छायावाद का प्रभाव, वहीं प्रगतिवाद प्रयोगवाद से आगे बढ़ नई कविता के स्पष्ट स्वर सुनाई पड़ते हैं। वे लिखते हैं, मैं विचरण करता हूँ एक फैटेंसी में, यह निश्चित है कि फैटेंसी कल वास्तव होगी। वर्तमान समय की वास्तविक स्थित जीवन अनेकानेक झंझावतों से उत्प्रोत है। सभी दुख एवं चित्कार करते हुए प्रतीत होते हैं कि मुक्तिबोध इस दुख से मुक्त करना चाहते हैं और वे कह उठते हैं, समस्या एक, मेरे सभी नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। मुक्तिबोध जी मानव द्वारा मानव का शोषण होना देखकर उद्वेलित हो उठते हैं। प्रगतिवादियों की भांति में शोषण के विरुद्ध जिहाद छेड़ देते हैं। वे वास्तव में जीवन को बड़े शांतिचित्त होकर एक प्रसन्न चित्त भाव से जीना चाहते हैं, जिनके लिए वे स्वयं लिखते हैं, जन्म लेना चाहता हूँ फिर से कि व्यक्तित्व त्वांतरित होकर नए सिरे से समझाना और जीना चाहता हूँ सच। मुक्तिबोध जी की काव्य कला में यथार्थवाद फोटोग्राफी मात्र रूप में नहीं प्रस्तुत हुआ है, उनका यथार्थवाद जीवन के रागात्मक एवं रसात्मक उद्बोधन के प्रतिरूप है। वे यथार्थवाद को देखते हैं किंतु हर पर उनके मन में एक चीज होती है कि दुखमय जीवन के यथार्थ को कैसे सुख शांति एवं समंदर सुंदरमय बनाई जाए। जिंदगी की कोख में जन्मा नया इस बात दिल के खून में रंग कर, बड़ा ही मार्मिक यथार्थ है किंतु पूर्णतः हृदय स्पर्शी एक तंत्र का तंत्र को झंकृत कर देने वाली है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के शब्दों में एक आलोचना की राय यह है कि इनकी कविता की पहचान के लिए दो लंबी कविताओं को आधार बनाया जा सकता है, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। इतनी सी शायद तो काम चले, लेकिन इन दो कविताओं के महत्व के बारे में संदेह नहीं है। कला की दृष्टि से मुक्तिबोध जी का काव्य एक अलग ही महत्ता रखती है। मुक्तिबोध की भाषा काव्य की प्रवृत्ति के अनुरूप होती है। जब भी वे यथार्थवादी जीवन का वर्णन करते हैं तो उनकी भाषा आम जनों द्वारा प्रयोग करने वाली भाषा होती है। वे इतने सरल हो जाते हैं कि साधारण पाठक उनकी बात समझ लेता है, जैसे कि वो हम बागी थे उस वक्त जब रास्ता कहाँ था, दिखता नहीं था कोई पथ, अब तो रास्ते ही रास्ते हैं। मुक्तिबोध की काव्य कला विचारात्मक भावनात्मक गवेषणापूर्ण भावों से ओतप्रोत है। उनके द्वारा वर्णात्मक एवं काव्यों में लय अपनी अलग ही महत्व रखती है। रस अलंकार छंद की दृष्टि से मुक्तिबोध आधुनिक जगत में अपना विशेष महत्व रखते हैं। उनके प्रायः प्रत्येक रस का अपने काव्य में प्रयोग किया गया है। करुणा एवं विवत्स रस का प्रयोग देखने ही को ही बनता है। रौद्र एवं भयानक रस का उनके रसवादी कविताओं में प्रयोग हुआ है। अनुप्रास रूपक प्रांतिमान उपमा अलंकार मुख्य रूप से आपकी कविताओं में देखा जा सकता है। मुक्तिबोध की कविता का शीर्षक है मेरे लोग, और जिंदगी की कोख में जन्मा नया इस बात दिल के खून में रंग कर आ, तुम्हारे शब्द मेरे शब्द मानो देह धारण कर असंख्य स्त्री पुरुष बालक बने जग में भटकते हैं कहीं जन्मे नए इस बात को पाने झुलसते जा रहे हैं आग में या मुद रहे हैं धूल धक्कड़ में किसी की खोज है उनकी किसी नेतृत्व की पीली घुमैली पसलियों के पंजरों वाली उदासी से पूती गायें भयानक तड़पड़ाती ठठरियों की आत्मवश स्थित प्रज्ञ कविताएं उपेक्षित काल पीड़ित सत्य के समुदाय या गोयुथ लेकर वे घुसे ही जा रहे हैं ब्राशिय के बस्ट वाली उन दुकानों के पास काफे के निकटवर्ती सड़क पर चमचमाती खूबसूरत सान की नायलान भब्भड़ में दुतरफा पेड़ वाली रम किंगजवे में की एल्गिन रोड नुक्कड़ पर खरोंचे भरती सी घिस रहे सी सौखुरों की खरखराती शब्द गति सुनकर खड़े ही रह गए हैं लोग उनमें सैकड़ों विस्मित कहीं निस्तब्ध कुछ भयभीत जाने क्यों समूचे दृश्य में मुंह मोड़ यह कहते हटाओ ध्यान हमसे वास्ता क्या है वे दुख स्वप्न आकृतियां असद हैं घोर मिथ्या है दलितर के सनिचर का भयानक प्राप गैंडा है खुरों खरखराते खुरजते पद शब्द स्वर समुदाय सुनकर दौड़ कर उन होटलों पर द्वार दिहली गैलरी पर खिड़कियों में या छतों पर जो इकट्ठा है गृहस्थी मौन बहने सड़क पर देखती हैं भाव मंथर काल पीड़ित ठठरियों की श्याम गवात्रा उदासी से रंगे गभीर मुरझाए हुए प्यारे गौ चेहरे ने रखकर पिघल उठता मन रुलाई गुप्त कमरे में ही दे की उमड़ती सी नई आए समझ में सत्य जो शिक्षित सुसंस्कृत बुद्धिमानों दृष्टिमानों के उन्हें हुए हैं कि मन ही मन सहज पहचान लेती है मग्न होकर ध्यान करती हैं कि अपने बालकों को छातियों से और चिपकाती भोले भाव की करुणा बहुत ही क्रांतिकारी सिद्ध होती है उपेक्षित काल पीड़ित सत्य के समुदाय लेकर साथ मेरे लोग असंख्य स्त्री पुरुष बालक भटकते हैं किसी की खोज है उनको अटकना चाहते हैं द्वार दहली पर किसी के किंतु मिलो दूरियों के देश खींचते हैं अंधेरी खाइयों के मुंह बगासी जोर से लेकर यूं ही बस देख अनपहचानती आँखों खुले रहते गंदगी बस्तियों के पास नाले पर बरगद है उसी के श्याम तल में वे रंभाती कई गायें के पत्थर ईंट के चूल्हे सुलगते हैं फुदकती हैं वहीं दो चार बिखरे बाल वाले बालकों के श्याम गंदे तन वो लोहे की बनी स्त्री पुरुष आकृतियां दलिद्र के भयानक देवता के भव्य चेहरे वे चमकते धूप में मुझको है भयानक ज्ञानी निज के श्वेत वस्त्रों पर स्वयं की शील शिक्षा सत्य दीक्षा के विरोधी अस्त्र शस्त्रों पर कि नगरों के सुसंस्कृत सौम्य चेहरों से उचटता मन उतारू आवरण यह साफ गहरा दूधिया कुर्ता वो चूने की सफेदी में चिलकते से सभी कपड़े निकालूंगा किसी ने दूर से मुझको पुकारा है गंदी बस्तियों के पास नाले पार घुमटी एक जिसके तंग कमरे में जरा सा पुस्तकालय वाचनालय है पहुँचता हूँ अचानक ग्रंथ कोई खोलता ही हूँ कि पृष्ठों के हृदय में से उभरते कपते हैं वायलिन के स्वर सहज गुंजारती झिनकार गहरे स्नेह सी मीठी सघन विस्तृत भटकती गूंज जिसकी सांद्र ध्वनियों में से सुकोमल रश्मियों के पुंज तेजोद्भास मान खुलता स्वयं ही ग्रंथियाँ खुलती कि इतने में फटी सी अन्य पुस्तक खोलता चाहूँ कि पृष्ठों के जिगर में से भयानक डांट कोई भव्य विश्वासमक तड़ित आघात सहज बोध होता है उभरता क्रोध निश्वात्मक सहज तनकर गरजता जिंदगी की कोख में जन्मा नया इस बात जिसके खून में रंग कर तुम्हारे स्वर कहाँ है आ प्रस्तुत काव्य मेरे लोक कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध की अत्यंत ही मार्मिक कविता है जहाँ दो संस्कृति की व्यवहारिकों में यथार्थवादी तुलना प्रस्तुत किया गया है अशीर्षक के अंतर्गत कवि ने स्वीकार किया है कि जिंदगी की कोख से एक नया इस बात जो कुछ कर गुजरने की लालसा से एक नए उत्साह उमंग के साथ हृदय के रक्त से रंगकर अवतरित होता है किंतु क्या वह जीवन में कुछ कर पाता है इसी भाव का उत्तर देते हुए आ भाग में कवि प्रस्तुत करता है मनुष्य अनेक भावनाओं से ज्ञान विज्ञान कला कौशल से युक्त होकर तुम्हारे और मेरे की भावना से आवृत होकर असंख्या स्त्री पुरुष बालक इस संसार में अनजान क्षेत्र प्राप्त करने के लिए भटकते हैं। वे भटकते हैं एक ऐसे संबल को पाने के लिए जो उन्हें आह्लादित कर दे, किंतु वे अपने इस खोज से भयंकर तूफानों एवं दग्ध अग्नि से घिर जाते हैं, अनेकानेक कष्ट उठाते हैं, किंतु उन्हें कोई ऐसा नेतृत्व मिल जाए जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सर्वत्र उदासीन एवं चिंता व्याप्त है। गाय जिन्हें हमारे लोग अत्यंत ही पवित्र जीव मानते हैं, उनकी दशा अत्यंत ही हीनावस्था में पहुंच चुका है। उनकी उपेक्षा अपनी एक नई कथा कहती है। जब कभी वे पीली घुमैली पतलियों से युक्त गायें सड़कों पर या एल्विन के रोड पर झुंड की झुंड चलती हैं, तो लोग स्वयं स्तब्ध होकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखते हुए कहते हैं, अरे यह व्यर्थ है, हमारा इनसे क्या अर्थ। कभी मुक्तिबोधी विचार करते हैं कि ये वे गायें जिन पर कभी किसी समय हमारा पूरा आर्थिक विकास निर्भर करता था, आज उनकी दशा अत्यंत ही दयनीय है। लोग उससे रंच मात्र संबंध नहीं रखते हैं। सर्वत्र अंधकार है, दलिद्र के संचर का साम्राज्य है। सभी जब निरीह कमजोर हीनावस्था में प्राप्त गायों की दशा देखकर मन में एक टीस उत्पन्न होती है, इस साथ ही वेदना भी, उसे मन पिघल उठता है। वास्तव में हमारे लोग अनजान क्षितिज के तलाश में पल प्रतिपल लगे रहते थे, किंतु अपने गंतव्य को न जानने के कारण सदैव व्यग्र होकर कुछ तलाशते हैं किंतु पा नहीं पाते। कभी उन बस्तियों की ओर भी ध्यान देता है जहाँ दीनहीन निर्धन गरीब दुबले पतले लोहे की छड़ की भांति स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं गंदे तन से युक्त होकर दरिद्रता के प्रतिरूप विचरते नजर आते हैं। इसी वातावरण में जब कोई नेतृत्व वर्ग गुजरता है तो उसे स्वयं भी ग्लानि महसूस होती है। जब वह विकास की ओर परिकल्पना करता है तो कई ऐसा भी जो उसे पुकारता है और इंगित करता है कि मात्र दिखावटी विकास की ओर नहीं, यथार्थ की ओर भी देखो। यथार्थ तुम्हें बताएगा कि जिंदगी में कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो हकीकत के बहुत ही निकट हैं और उन्हें भी पकड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जिंदगी की कोख में जब कभी एक नया इस बात का जन्म होता है तो वह निश्चय एक नई पुकार देता है और यह नई पुकार जीवन का एक नया झंझावत प्रारंभ करता है। कभी का मूल भाव यह है कि मेरे लोग का जीवन अत्यंत ही कष्ट दुख पीड़ा वेदना से उत्पूर्त है। जिनके पास रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा आदि कुछ भी नहीं, वे इस बात की भांति शनिचर के दलिद्र हैं। उनके मन में न कोई राग है न कोई रंग, सब दुखी दरिद्र हैं, गंदे बस्तियों में जीवन यापन कर रहे हैं। उनका जीवन एक फटे पुस्तक के समान है। कला पक्ष प्रभावशाली है, भाषा सुसंस्कृत है, हिंदी खड़ी बोली है। विभिन्न रूपकों के माध्यम से काव्य के को सरस बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसमें विभत्स करुण दोनों का सम्मिश्रण है, भयानक रस का भी पुट सम्मिलित है। छंद मुक्तक है, शैली वर्णात्मक विवेचनात्मक एवं भयान भावात्मक है। यहीं पर मुक्तिबोध की कविता एवं उसकी व्याख्या समाप्त होती है।